कमरे में हल्की रोशनी है। सानवी अपने बाल बांधते हुए आईने के सामने खड़ी है। पीछे बैठी रिया उसे ध्यान से देख रही है, जैसे कुछ पूछने का इंतजार हो। रिया, धीरे से, तो तुम क्या फैसला कर रही हो सानवी? सानवी रुकती है, गहरी सांस लेकर रिया की ओर मुड़ती है। सानवी, मैंने सोचा है रिया, मैं दोनों जॉब करूंगी। रिया चौंक कर, दोनों? मतलब इंद्र के क्लब का किचन भी और आर्यन का पर्सनल शेफ का काम भी? सानवी हल्की मुस्कान देती है, पर आंखों में दृढ़ता साफ दिखती है। हाँ, इंद्र चाहता है कि मैं उसके क्लब का पूरा किचन संभालूं, मुख्य शेफ की तरह, और आर्यन का काम वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। दो जॉब का मतलब है दो सैलरी। रिया उसे गौर से देखती है, कहीं चिंता कहीं गर्व। लेकिन खोदोगी तो खुद को नहीं थका दोगी? पढ़ाई अभी अभी खत्म हुई है। सानवी धीरे से सिर हिलाती है। मेरी स्टडी खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक वर्कशॉप बाकी है और मुझे पैसे चाहिए रिया। एक सैलरी से सिर्फ घर चलेगा, लेकिन मेरे सपने, अपने रेस्टोरेंट का सपना, वो दूसरी सैलरी से ही पूरा होगा। अगर अभी मेहनत नहीं करूंगी तो कब करूंगी? रिया उसकी तरफ बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखती है, नरमी से। सोच लो, ये आसान नहीं होगा। सानवी की आवाज़ धीमी मगर बेहद पक्की होती है। मैंने सोच लिया है, मैं दोनों काम करूंगी, आर्यन के लिए भी और इंद्र के क्लब के लिए भी। अब वक्त है कि मैं अपने सपनों की तरफ पहला बड़ा कदम उठाऊं। रिया मुस्कुराती है, मानो उसकी दोस्त की हिम्मत पर गर्व हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी करना है पूरे दिल से करना। सानवी मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है। रिया और सानवी की बात अभी अभी खत्म हुई है, तभी सानवी की नज़र कृति पर जाती है, जो बेड पर बैठी लगातार मुस्कुराई जा रही है, मानो कोई बड़ा राज छुपा रखा हो। सानवी, भौहें उठाकर, कृति, क्या बात है, तू ऐसे हंस क्यों रही है? कहीं कंपनी की हिस्सेदारी तेरे नाम तो नहीं हो गई जो इतनी खुश घूम रही है? कृति जोर से हंस पड़ती है। दीदी, आपको पता भी नहीं, मैंने वो डॉक्यूमेंट वाला पूरा मामला ठीक कर दिया है। सानवी और रिया दोनों एक पल के लिए हैरान रह जाती हैं। सानवी चौंक कर, क्या कृति, तूने? कृति उत्साह से बीच में ही बोल पड़ती है, हाँ, अब कोई खतरा नहीं है, अब सब क्लियर है, अब आप और आर्यन एक हो सकते हो। मैं सच में आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ दीदी। सानवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, उसकी खुश आंखें, उसका विश्वास। फिर सानवी गहरी सांस लेकर उसके पास बैठती है। सानवी, नरमी पर थोड़ी सख्ती के साथ, कृति सुन, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, समझी? कागज़, दस्तावेज, कंपनी, ये खेल नहीं होते, और किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जाता। लोग कैसे बदल जाते हैं ये दुनिया देख चुकी हूँ मैं। कृति का चेहरा थोड़ा उतरता है, लेकिन वो ध्यान से सुनती है। सानवी, उसका हाथ पकड़कर, तुझे अपने काम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इन झमेलों में मत पड़ पागल। कृति हल्के से मुस्कुराती है, ठीक है दीदी, बस मैं आपको खुश देखना चाहती थी। सानवी उसके माथे पर हल्की चपत लगाती है, और मैं चाहती हूँ मेरी छोटी बहन समझदार बने। चल, अब ये मुस्कान संभाल के रख, जरूरत पड़ सकती है मुझे। कृति फिर हंस पड़ती है, और कमरा एक हल्की प्यारी बहन वाली गर्माहट से भर जाता है। हवा में हल्की ठंड खुली है, सामने सड़क की लाइटें झिलमिला रही हैं। सानवी और रिया बालकनी की रेलिंग पर गर्म चाय के मग रखे बैठी हैं, खाने के बाद का शांत माहौल। लेकिन सानवी के चेहरे पर एक बोझ साफ नजर आ रहा है। रिया उसे कुछ देर तक देखती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, क्या सोच रही हो सानवी? चेहरा बता रहा है कुछ ठीक नहीं। सानवी चुप रहती है, फिर बालकनी के बाहर कहीं दूर नजरें टिकाकर बोलती है, पता है रिया, आज आर्यन अच्छा नहीं लगा, वो उसने मुझे इग्नोर किया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रिया कप उठाकर धीरे से घूंट लेती है, जहां समझ भी है और चिंता भी। तुम बहुत उदास लग रही हो। सानवी की आंखें भरने को होती हैं, लेकिन वो संभाल लेती है। दिल कहता है वो नजरों के सामने रहे, बस पास, यहीं दिल के करीब, पर मैं उसकी उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकती रिया। ऐसा लगता है मेरा खुद पर से अख्तियार खत्म हो रहा है, जैसे उसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया हो। और सबसे बुरा क्या है, फर्क, हमारे बीच बहुत फर्क है। वो गहरी सांस लेती है, आवाज भर्रा जाती है, मैं उसे चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ, पर साथ ही मैं उसे दूर भी रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी इग्नोरेंस मुझे तोड़ देती है और उसका पास आना मुझे कमजोर कर देता है। रिया उसकी ओर सरकती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है, नरमी से। सानवी, प्यार में किसी का करीब होना कमजोरी नहीं होता, और किसी का इग्नोर करना हमेशा नफरत नहीं होता। लेकिन तुम क्यों खुद से लड़ रही हो? सानवी पलकें झपकती है, आंसू रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं उससे अपने को खोती जा रही हूँ। रिया, मैं अपनी हदें भूल रही हूँ और मैं ऐसा नहीं चाहती, पर फिर भी उसका दूर होना भी मुझे सहा नहीं जाता। रिया उसे अपनी ओर खींचकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। प्यार ऐसा ही होता है पगली, कभी पकड़ कर रखता है, कभी छोड़ जाने से डराता है। लेकिन जो भी हो, तू अकेली नहीं है, कभी भी नहीं। सानवी चुपचाप सिर उसके कंधे पर रख देती है। ठंडी रात में बालकनी पर इन दोनों सहेलियों की गर्माहट और दिल की बातें कुछ देर तक हवा में घुली रहती हैं। आर्यन किचन में टहल रहा है, हाथ में कॉफी का कप है, लेकिन कॉफी ठंडी हो चुकी है। उसकी नजरें बार बार दीवार पर लगे घड़ी पर जाती हैं। हर दिन सानवी जब सुबह आती थी, आज वो समय निकल चुका था, वो नहीं आई, और ये बात उसे बेचैन कर रही थी बहुत ज्यादा। आर्यन शायद ही कभी किसी के लिए इतना बेचैन हुआ हो, पर आज अंदर से कुछ हिल रहा था। कुछ देर बाद बेचैनी उसकी सहन शक्ति से आगे बढ़ जाती है। वो मोबाइल उठाता है, सानवी का नंबर डायल करता है। आर्यन, धीरे लेकिन घबराहट छुपाते हुए, हेलो सानवी, तुम ठीक हो? आ जाई क्यों नहीं? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर सानवी की धीमी आवाज, मैं आज थोड़ा लेट आऊंगी, घर पर थोड़ा काम था, बस थोड़ा समय लग गया। आर्यन एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता है, मन में राहत उतरती है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ जाना, कहते हुए उसने फोन काट दिया। हाथ में पकड़ा हुआ कप उसने सिंक में रख दिया। कप की आवाज उसकी बेचैनी की तरह थी, और फिर खुद को संभाल नहीं पाया। सानवी से न मिलना उसके लिए अजीब था, लगा जैसे घर में कुछ कमी हो। कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है ताजी हवा लेने के बहाने, पर असल में मन कह रहा था शायद रास्ते में ही वो मिल जाए। वो गाड़ी में बैठता ही है कि असल में सानवी आ चुकी थी। वो आर्यन के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसके सामने वो खुद को कमजोर महसूस करती थी, इसलिए उसने उसके घर आने का टाइम टाल दिया ताकि वो उसके निकलने के बाद आए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ती है, दरवाजा दोबारा खुलता है, आर्यन वापस आ चुका होता है। सानवी एकदम रुक जाती है, पीछे हाथ में एक छोटा सा सफेद लिफाफा पकड़े हुए। आर्यन की नजरों में तुरंत सवाल जा रखता है, आर्यन तुम्हारे हाथ में क्या है? सानवी का गला सूख जाता है। वो लिफाफा उसकी ओर बढ़ा देती है बिना बोले। आर्यन लिफाफा खोलता है, अंदर एक छोटा सा नोट। मैं काम छोड़ रही हूँ, सीधे मना कह नहीं सकती, इसलिए ये लिख कर दे रही हूँ। आर्यन की उंगलियां कागज पर थोड़ी देर रुकी रहती हैं। उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, पर अभी वो कुछ कह नहीं पाता। सानवी उसकी ओर नहीं देख पा रही। सानवी, धीरे, लगभग फुसफुसाकर, मैं अब जा रही हूँ। वो पलटकर आगे बढ़ जाती है, बिना खुद को एक पल भी दिए कि वो उसके चेहरे की प्रतिक्रिया पढ़ सके या वो उसे रोक ले। आर्यन उसके जाते हुए कदमों को देखता रहता है, जैसे अचानक किसी ने उसके भीतर से कुछ खींच लिया हो। लिफाफा उसके हाथ में कांप रहा होता है और उसकी सांस पहली बार भारी हो जाती है। सानवी जा चुकी है। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज भी आर्यन के अंदर कुछ तोड़ देती है। वो अब भी उसी जगह खड़ा है, हाथ में पकड़ा हुआ सानवी का लेटर, उंगलियां हल्की कांपती हुई। किचन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई है,
जैसे घर भी समझ गया हो कि कुछ गलत हुआ है। उसी खामोशी को चीरते हुए बाहर से कदमों की आवाज आती है। इंद्र अंदर आता है।